أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستوں السلام علیکم میری ईश्वर से ही आशा है कि आप सभी अपने जीवन में सुखी और प्रसन्न हों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में शक के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमारी बातचीत का आधार वो शंकाएं हैं जो नमाज में हमको होती हैं, यानी नमाज से संबंधित शंकाओं के बारे में हम बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। हमने अपने पिछले कार्यक्रम को जहाँ पर समाप्त किया था वो ये था कि हम बातचीत कर रहे थे उन शंकाओं के बारे में जो नमाज में होती हैं और मान्य हैं। यानी क्या मतलब, यानी उनके लिए हमारे फुकहा ने और इस्लाम ने कुछ कानून बताए हैं कि जिनके आधार पर शंकाओं का निवारण करते हुए नमाज को सही किया जा सकता है। उसी बातचीत को हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, एक दो मसले आपके सामने उसी से संबंधित बयान करेंगे। हमने अंतिम जो बातचीत जहाँ पर समाप्त की थी वो ये था कि अगर किसी इंसान को चौथी और पांचवी रकत में शक हो तो वो क्या करेगा। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें बताई थी कि एक शक ये होता है कि जब वो क़याम की हालत में है तो क्या करेगा, और दूसरा जब वो दोनों सजदे समाप्त कर चुका है तो क्या करेगा। तो हमने बताया था कि अगर क़याम की हालत में उसको शक होता है कि चौथी और पाँचवीं है तो वो वहीं पर बैठ जाएगा, चौथी रकत समझते हुए नमाज समाप्त करेगा, और उसके बाद एक रकत नमाज एहतियात खड़े होके या दो रकत नमाज एहतियात बैठ के पढ़ेगा। और अगर यही शक यानी चार और पाँच के बीच में शक होता है उसको दोनों सजदे समाप्त करने के बाद, तो उसको चाहिए वो चार समझते हुए नमाज को वहीं पर सलाम पढ़ के समाप्त कर दे और उसके बाद दो सजदे सहो कर ले। उसके बाद अगर किसी इंसान को ये शक होता है कि हम नमाज पढ़ रहा था उसको ये शक हुआ कि जो मैं रकत पढ़ रहा हूँ वो तीसरी है या पांचवी, यानी तीन और पांच के बीच में उसको शक हुआ, और शक की स्थिति क्या है, जिस समय उसको शक हो रहा है वो खड़ा हुआ था यानी क़याम की हालत में था। क़याम की हालत में अगर एक नमाजी को शक इस बात का हो कि वो तीसरी रकत में है या पाँचवीं रकत में है तो उसको चाहिए कि वो अपनी नमाज को चौथी समझे, यानी चौथी रकत नमाज समझ के नमाज को समाप्त कर दे, सलाम पढ़ ले और उसके बाद दो रकत नमाज एहतियात खड़े होके पढ़े। तीसरी और पांचवी में शक हुआ क़याम की हालत में, चौथी समझेंगे और उसके बाद दो रकत नमाज एहतियात खड़े होके पढ़ी जाएगी। और अगर नमाज पढ़ते समय किसी को और आगे शक हो जाए, नमाज पढ़ रहा था नमाज पढ़ते समय उसको शक ये हुआ कि पता नहीं जो जिस रकत में वो है वो तीसरी है चौथी है या पांचवी, इसमें तीन शक है यानी नहीं पता उसको तीसरी है चौथी है या पांचवी है, उसकी स्थिति यह है कि क़याम की हालत में है, क़याम की स्थिति में शक ये हुआ कि नमाज जो रकत है वो तीसरी रकत है चौथी रकत है या पांचवी रकत है, तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि उसको चाहिए कि वो अपनी नमाज को चौथी समझे, चौथी रकत नमाज समझते हुए वो अपनी नमाज को सलाम पढ़ के समाप्त कर दे और उसके बाद दो रकत नमाज एहतियात खड़े होके और दो ही रकत नमाज एहतियात बैठ के पढ़े। अगर ऐसा करता है तो उसकी नमाज सही हो जाएगी। और उसके बाद अगर इंसान को और आगे शक होता है, कोई बहुत बड़ा शक करने वाला था, उसको नमाज़ पढ़ते समय यह शक होता है कि जो रकत वो पढ़ रहा है वो पांचवी है या छठी, यानी चौथी से भी आगे निकल गया, उसको शक ये हुआ कि पाँचवीं रकत पढ़ रहा है या छठी रकत पढ़ रहा है क़याम की हालत में, तो अगर क़याम की हालत में उसको शक होता है कि पांचवी पढ़ रहा है छठी पढ़ रहा है तो वो अपनी नमाज को चौथी रकत पढ़े समझे, चौथी रकत को समझते हुए नमाज को समाप्त कर दे, सलाम पढ़ ले और उसके बाद दो सजदे सहो करे और उसकी नमाज सही होगी। तो नमाज में वो संदेह वो शंकाएं जो मान्य थीं और जिनके बारे में कुछ कानून बताए गए जिनसे उस नमाज को सही किया जा सकता है, जिसको हमने आपके सामने अभी बयान किए, इसके अलावा भी बहुत सारे किसी को शक हो सकता है, अलग अलग प्रकार के शक हो सकते हैं, उसके लिए उसको चाहिए कि अपने शक से संबंधित मसलों को देखे और उसके अनुसार अपनी शंका का निवारण करें। तो ये वो कुछ चीज़ें थीं शक से संबंधित जो हमने आपको संक्षिप्त रूप से बयान किया। उसके बाद कुछ इसे कहा जाए कानून है शंकाओं से संबंधित, जिसको हम आपके सामने बयान कर दें ताकि जिस समय इंसान को शंका होती है वो अपनी शंका का अच्छे से निवारण कर सके। कि जिस समय इंसान को शक होता है किसी नमाज में, पहला कानून ये है कि जिस समय इंसान को नमाज पढ़ते समय वो शक होता है, जो शक सही है यानी मान्य है, तो वो अपनी नमाज को तोड़ नहीं सकता है। यानी नमाज पढ़ते समय वो शक होता है जो मान्य है, जिसको जिसको हमने अभी आपके सामने एक के बाद एक करके तकरीबन 7-8 शक आपके सामने बयान किए, उनमें से कोई एक शक होता है नमाज पढ़ते समय शक हुआ, तो वो नमाजी अपनी नमाज को तोड़ नहीं सकता है। यानी अगर उसको किसी प्रकार का शक हो, मसलन चौथी और पाँचवीं रकत में शक हो जाए तो उस नमाज को तोड़ दे, तोड़ नहीं सकता है, बल्कि उसको चाहिए उस शंका के अनुसार जो मसला बयान किया गया है उसके ऊपर अमल करे और उसके अनुसार अपनी नमाज को सही करे। यानी अगर उसको नमाज एहतियात कही गई है तो नमाज एहतियात पढ़े, अगर सजदे सहो कहा गया है तो सजदे सहो करे वगैरह, इस प्रकार की चीज़ कार्यों को अंजाम दे। जैसा कि हम अपने समाज में भी देखते हैं कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शकियात के जो मसले हैं, शक के जो मसले हैं नमाज में, वो बहुत कठिन हैं और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अमल करना बहुत कठिन है, इसलिए वो ये सोचते हैं कि अगर हमको शक हो जाए इस प्रकार का तो बेहतर यही कि नमाज को तोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, ये कार्य सही नहीं है। इंसान को अगर सही शक में से कोई शक होता है तो वो अपनी नमाज को तोड़ नहीं सकता है, और अगर नमाज को तोड़ देता है तो उसने पाप किया है, वो पाप का भागीदार होगा। तो इसके एक तो ये कानून हुआ। उसका दूसरा कानून जो हम यहाँ पर बयान कर सकते हैं वो ये है तो कि अगर इंसान को नमाज पढ़ते समय शक हो जाए, किसी भी रकत के बारे में शक हो, तो वो फौरन उस शक के अनुसार कार्य नहीं कर सकता, बल्कि उसको चाहिए, जिसको हमने अपने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि उसको चाहिए थोड़ी देर ठहरे, सोचने की कोशिश करे, ध्यान लगाए, शायद उसको याद आ जाए। अगर उसको थोड़ी सी भी संभावना हो जाती कि मसलन हमने तीसरी रकत में थे या चौथी रकत में थे, तो उसी के अनुसार अपनी नमाज को आगे बढ़ा दे। यानी अगर उसको याद आ जाता है तो उसी के अनुसार अपनी नमाज को आगे बढ़ा देगा। लेकिन अगर फिर भी शंका बाकी रह जाती है, तब वो अपनी शंका का निवारण करने के लिए और अपनी नमाज को सही करने के लिए बताए गए कानून के ऊपर अमल करते हुए अपनी नमाज को सही करेगा। और तीसरा कानून जो हमको इसी शंकाओं में हो सकता है वो ये है कि जिस समय इंसान को शंका होती है तो वो अपने नमाज की रकत को हमेशा आगे की तरफ रखेगा, जब तक कि वो 4 रकत से आगे न निकल जाए। यानी जैसे अगर 3 और 4 रकत में शक होता है तो वो ये समझेगा कि हमारी रकत 4 है, अगर 2, 3 और 4 के बीच में शक होता है तो वो ये मानेगा कि हमारी जो रकत है जिस समय हम पढ़ रहे हैं वो चौथी रकत है। लेकिन अगर 4 रकत से आगे निकल जाता है, जैसे शक ये हुआ कि चौथी है या पाँचवीं है, पाँचवीं है या छठी है, इस प्रकार का अगर शक होता है वो, तो वो चौथी पर अपनी बिना रखेगा और वो अपनी नमाज को चौथी मानेगा। उसके बाद जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि जब शंका होती तो उसके निवारण का एक तरीका ये है कि बाज़ स्थानों पर नमाज एहतियात पढ़ी जाती है, नमाज एहतियात खड़े होके या नमाज एहतियात बैठ के। यहाँ पर हो सकता है हमारे दर्शकों के जहन में यह सवाल उठे कि नमाज एहतियात क्या है। नमाज एहतियात अगर देखा जाए तो उस नमाज को कहते हैं जो नमाज में होने वाली संभावित त्रुटियों, संभावित कमियों को पूरा करने के लिए होती है। इसीलिए जब हमें शक होता है कि नमाज हम तीसरी रकत है या चौथी रकत है, तो चूँकि यहाँ पर एक रकत की ये संभावना है कि एक रकत कम हो, जैसा कि हमने कहा कि अगर शक होता है इंसान को नमाज तीसरी है या चौथी है, तो हमने कहा वो चौथी रकत को समझते हुए नमाज को समाप्त कर दे। उसके बाद हमने कहा एक रकत नमाज एहतियात खड़े होकर या 2 रकत नमाज एहतियात बैठ के पढ़े। क्यों कहा? क्योंकि बहुत संभव ये है कि जिसको हमने 4 रकती नमाज समझा है और 4 रकती नमाज समझ के समाप्त कर दिया, वो 3 ही रकत रही हो, इसलिए जो 1 रकत कम रह गई है उसकी कमी को ये हमारी नमाज एहतियात पूरा कर देगी। उसके बाद जैसे हमने बताया था कि बाज़ स्थानों पर सजदे सहो किया जाता है, जैसे 5वीं और 6वीं रकत में अगर शक हो जाए कि हमारी रकत 5वीं है छठी, तो सजदे सहो क्यों किया जाता है? सजदे सहो उन स्थानों के लिए जहाँ पर हमको संभावित ज्यादती का वो होता है कि हमको लगता है शायद कुछ ज़्यादा हो गया, इस स्थान पर ऐसे स्थानों की त्रुटि को दूर करने के लिए यहाँ पर सजदे सहो वगैरह किया जाता है। और जहाँ पर एक और जो बात बयान किया जाता है वो ये है कि जिस समय नमाज एहतियात 2 रकत वाजिब होती है, जैसे कि हमने कहा बाज़ स्थानों पर ऐसे होते हैं जहाँ पर 2 रकत नमाज एहतियात खड़े होकर पढ़ना होगा, तो अगर किसी इस इंसान के लिए 2 रकत नमाज एहतियात खड़े होकर वाजिब हो तो वो उसकी जगह पर 4 रकत बैठ के नहीं पढ़ सकता है। जैसे कि हमने बाज़ मसलों में बताया था कि 1 रकत नमाज एहतियात खड़े होकर, 2 रकत नमाज एहतियात बैठ के पढ़े, तो इस कानून को उस जगह पर लागू नहीं किया जा सकता है जहाँ पर 2 रकत नमाज एहतियात खड़े होकर वाजिब हो रही है। जैसे कि अगर हमको दूसरी और चौथी रकत में शक होता है जो है 2 सजदे समाप्त होने के बाद, तो हमारा ये है कि हम 2 रकत नमाज एहतियात पढ़ें, तो यहाँ पर चूंकि 2 रकत नमाज एहतियात खड़े होने के लिहाजा यहाँ पर हम 4 रकत नमाज एहतियात बैठ कर नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि हमारा दायित्व ये है कि हम 2 रकत नमाज एहतियात खड़े होकर ही पढ़ें। तो ये वो कानून थे, वो जो मसाइल थे जो हमने आपके सामने बयान किए शंकाओं से संबंधित, यानी जब हमको शंका होती है तो हम उसका निवारण कैसे करें और अपनी नमाज को कैसे सही करें। तो जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में ही ये बात बताई थी कि जब हमको रकत के बारे में, नमाज की रकतों के बारे में शक होता है, तो ये शक कई प्रकार का होता है। एक शक वो है जो हमारी नमाज को बातिल कर देता है, जिसको हमने पिछले प्रोग्राम में बताया। उसके बाद एक शक वो है जो नमाज को बातिल नहीं करता है, मान्य है, यानी उसके लिए कुछ कानून, कुछ चीज़ें बयान की जिसको हमको करना होता है, जिसको हमने अपने प्रोग्राम में भी पहले बताया। उसके बाद एक इसी नमाज की रकतों में एक शक वो है कि जब उस शक को मान्य नहीं माना जाएगा, यानी क्या मतलब, यानी यह है कि जब उसको इंसान को शक ये होता है तो वो अपने शक के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा बल्कि वो अपनी नमाज को आगे बढ़ा देगा। वो कौन कौन से स्थान है जहाँ पर अगर इंसान को शंका होती है, इंसान को शक होता है तो अपने शक पर ध्यान नहीं देगा या उसका शक मान्य नहीं होगा, वो कौन कौन से हैं हम आपके सामने अभी बयान कर रहे हैं। सबसे पहला स्थान कि जब इंसान को शक होता है और अपने शक को मान्य नहीं मानेगा, अपने शक पर ध्यान नहीं देगा, वो शक है जब इंसान उस स्थान से गुजर चुका हो। जैसे कि हमने अपने किसी प्रोग्राम में जब हम ये बात कर रहे थे कि इंसान को अगर नमाज के किसी अंश, किसी जुज़ के बारे में शक हो कि उसने वो पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी उस स्थान से निकलने के बाद, तो अगर स्थान को आगे निकल स्थान से आगे निकलने के बाद उस चीज़ के बारे में शक होता है तो अपने शक पर ध्यान नहीं देगा। जैसे जैसे कि अगर हम रुकू में पहुंचने के बाद ये शक करें कि हमने अलहम्द का सूरा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, या हमने दूसरा सूरा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, तो चूँकि हम उस स्थान से गुजर चुके हैं और रुकू में पहुँच चुके हैं इसलिए हमको अपने उस शक के ऊपर ध्यान नहीं देना होगा। दूसरा शक जहाँ पर हम अगर शक होता है तो हम अपने शक के ऊपर कोई ध्यान नहीं देंगे बल्कि हमारा शक ऐसा ही होगा जैसे शक नहीं था। किस समय? जब इंसान को नमाज पढ़ने के बाद शक हो, यानी सलाम पढ़ चुका है, सलाम पढ़ने के बाद कुछ शक हुआ, मसलन शक हुआ जो नमाज़ पढ़ी थी वो सही थी या नहीं थी, या मसलन उसने सूरह हम्द पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अगर सलाम कर पढ़ने के बाद उसको शक होता है तो उसको अपने शक के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए और ये शक उसका मान्य नहीं होगा। तीसरा स्थान जहाँ पर इंसान को शक अगर हो तो वो अपने शक के ऊपर ध्यान नहीं देगा, ये उस व्यक्ति के लिए जो बहुत अधिक शक करता है, हर कुछ समय बाद उसको नमाज में शक होता रहता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत अधिक शक होता है, बहुत अधिक शंकाएँ होती हैं नमाज में, उसको अपने शक, अपने शंकाओं के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए और उसका शक और संदेह मान्य नहीं होगा। उसके बाद का स्थान जहाँ पर हम अगर शक करते हैं तो हमारा शक मान नहीं होगा, ये उस समय का है जब नमाज जमात से हो रही हो, इमाम और मामून में से किसी एक को शक हो, या इमाम को शक हो या मामून को शक हो, तो अगर इमाम या मामून में से किसी एक को शक होता है तो उसका शक मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे को याद है, वो बता सकता है, इसलिए उसका शक मान्य नहीं है और इस शक के ऊपर उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके बाद जो शक इंसान का मान्य नहीं है और जिसके ऊपर उसको ध्यान नहीं देना चाहिए वो ये है कि जब इंसान को मुस्तहब नमाज़ों में शक हो, अगर इंसान को मुस्तहब नमाज़ों में शक होता है तो उसका शक मान्य नहीं होगा, उसको अपने शक पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये वो शक थे जो हमने आपके सामने बयान किए जिसमें इंसान को अपने शक के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो अगर हम आज अपने इस प्रोग्राम का सारांश बयान करना चाहें तो हमने सबसे पहले आपके सामने कुछ वो शंकाएं बयान की जिसका निवारण कुछ विशेष तरीक़ों से किया जाता है, उसके बाद कुछ कुल्ली कानून बनाए आपके सामने जिन कानून के सहारे से हम अपनी नमाज को सही कर सकते हैं, उसके बाद हमने आपके सामने कुछ वो शंकाएं बताई जिन शंकाओं पर इंसान को अमल नहीं करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए और उनकी वो शंकाएं मान्य नहीं है। इसके अलावा शक से संबंधित, शंकाओं से संबंधित और भी मसले हैं, इस इंशाल्लाह उनको हम अपने अगले प्रोग्राम में बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।